वैज्ञानिकों को संदेह है कि नया कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन का संस्करण डेल्टा संस्करण की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है, लेकिन रोगी थकान जैसे हल्के लक्षणों की रिपोर्ट कर रहे हैं। डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन में 86 उत्परिवर्तन हैं और अब विश्व भर में वैज्ञानिक इस नए वेरिएंट के विषय में जानने के लिए तीव्र गति से काम कर रहे हैं। वे इस बात का पता लगा रहे हैं कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस ने लगभग 2 वर्षों से वैज्ञानिकों को व्यस्त रखा है। सबसे सुरक्षित और नियंत्रित प्रयोगशालाओं के अंदर वायरोलॉजिस्ट स्वैब से वायरस विकसित करते हैं। पिछले 2 सालों से अल्फा, बीटा, डेल्टा और कई अन्य वेरिएंट का परीक्षण किया गया है। और इस हफ्ते सिडनी के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन संस्करण को विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। सिडनी में स्थित किर्बी इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु अग्रवाल बताती हैं कि वैज्ञानिक वायरस को कैसे विकसित करते हैं।
बेसिकली आवर फीडिंग आवर सेल्स विद दिस स्पेशल ब्रॉथ दैट वी हैव एंड होपफुली दैट विल सपोर्ट वायरस ग्रोथ एंड फ्रॉम देयर ऑन या इट्स गेम ऑन। यस,
यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन वायरोलॉजिस्ट को उम्मीद है कि ओमिक्रॉन विकसित हो रहा है जो उन्हें उसके व्यवहार के बेहतर ढंग को समझने में मदद करेगा। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में किर्बी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने महामारी के दौरान कम से कम 14 कोविड वेरिएंट का अध्ययन किया है। उन्हें उम्मीद है कि 2 सप्ताह के भीतर ही वे इस ओमिक्रॉन संस्करण को पर्याप्त रूप से विकसित कर लेंगे। वे इस बात का पता लगा लेंगे कि यह वेरिएंट कोरोना वायरस परिवार में कहाँ फिट बैठता है और यह कितना गंभीर है। किर्बी इंस्टीट्यूट के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर स्टुअर्ट टर्वेल का कहना है कि वे ये निर्धारित करने में सक्षम होना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन एंटीबॉडी ओमिक्रॉन को रोक पाएगी या नहीं।
So, whether it be a booster or whether it be a double dose vaccination, if we can show that those antibodies are still hanging in there and still binding and still blocking the virus, that's the first good news that we want to see.
ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी शुरुआती दिन हैं, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी तक इसे एक प्रमुख संस्करण घोषित नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सिस्रो के डॉक्टर रॉब ग्रेनफेल कहते हैं,
If it'll dominate, it's going to run over the next 9 months like Delta has, and then we'll start to see it peter out. And if we don't get another variant emerge somewhere over that period, we'll start to say we may be out of this.
पर्थ में रह रहे एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रविश जॉयस का कहना है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये वेरिएंट अभी नया है।
ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, जैसे आपने जिक्र किया। ओमिक्रॉन अभी साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेटेड है और अभी काफी सारे दुनिया के काफी सारे कोने में देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और ये काफी सारे कंट्रीज में अभी ओमिक्रॉन का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है ओमिक्रॉन का कि वो एक नया वेरिएंट है। उसका मतलब है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है, वो वायरस के ऊपर जो एंटीजन्स और स्पाइक प्रोटीन्स जो बोलते हैं, जिससे वो वायरस को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, वो बदल गया है। इसको म्यूटेशन बोलते हैं। और हर कोई वायरस जो जुकाम और सर्दी खांसी कॉज करता है, वो वायरसेस काफी महीनों में, कभी कभी सालों में ऐसे म्यूटेट होते रहते हैं और फिर बदलते रहते हैं। और वो एक वायरस का एक तरीका है बॉडी के इम्यूनिटी को बाईपास करने का। और उस वजह से ओमिक्रॉन जो अभी नया जो वेरिएंट है, उसमें से जो जेनेटिक स्टडीज किए गए हैं या आइडेंटिफिकेशन स्टडीज जो किए गए हैं, उसमें ये मालूम पड़ता है कि जो स्पाइक प्रोटीन है वो काफी बदल चुका है। तो उस वजह से ओमिक्रॉन अभी ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। मतलब अभी आप समझे डेल्टा थी पहले, अभी डेल्टा वायरस समझे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जिस अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हो सकती है, तो ऐसा लग रहा है ओमिक्रॉन का एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो ऐसा है कि ओमिक्रॉन से और ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उसका मतलब है कि ओमाइक्रॉन ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है. बट ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है स्पेशली साउथ अफ्रीका और अदर अफ्रीकन कंट्रीज से कि जो ओमाइक्रॉन के सिम्टम्स है, जो लक्षण दिखते हैं, वो लक्षण COVID-19 के जो लक्षण थे उनसे काफी मिलता है पर थोड़ा अलग भी है. और ऐसा लग रहा है कि ओमाइक्रॉन की वजह से इन्फेक्शन माइल्ड हो सकती है. तो ये दोनों तरफ मुड़ सकता है. कभी कभी कुछ पेशेंट्स और सिक भी हो सकते हैं, स्पेशली जो वल्नरेबल रहते हैं, जो जिनका बाकी सारा रिस्क फैक्टर्स है, जिन वजह से COVID-19 में प्रॉब्लम होती थी वही रिस्क फैक्टर्स से ओमाइक्रॉन वेरिएंट में भी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है. ऐसा वायरस के जो नेचुरल हिस्ट्री होती है जिनसे वो म्यूटेशन हो के कभी कभी वायरस ज्यादा विरुलेंट बन जाते हैं. विरुलेंट का मतलब है कि ज्यादा स्प्रेड और ज्यादा खतरनाक बीमारी कॉज कर सकते हैं. कभी कभी वही वेरियंट्स थोड़ा माइल्डर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं. तो ऐसा दोनों तरफ हो सकता है. अभी तक जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और काफी दुनिया के काफी सारे कंट्रीज में से जो रिपोर्टिंग हो रही है, WHO का अपडेट आप देखें, तो इन सब में ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इतनी क्लैरिटी नहीं है ओमाइक्रॉन की वजह से इन्फेक्शन माइल्ड हो रही है या ज्यादा हो रही है. और 2-3 हफ्ते लगेंगे मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और रिपोर्ट करेंगे, ज्यादा कंट्रीज ये सिम्टम्स को रिपोर्ट करेंगी तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा. जैसे COVID-19 है, COVID-19 जब पहले पहले आया था नवंबर दिसंबर जनवरी दिसंबर 2019 में, तो वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने को थोड़े टाइम लगे थे. अभी तो पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम इतना अच्छा हुआ है कि इतनी देर नहीं लगनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में समझ जाएगा कि इस वजह से COVID-19 विथ ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है माइल्ड या माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है, वो समझ में आ जाएगी. जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें से काफी सारे यंगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है साउथ अफ्रीका में. हो सकता है कि यंगर पेशेंट्स, वो इनका इम्यूनाइजेशन का हो सकता है या फिर मे बी उनको इम्यूनाइज नहीं हुए हो. काफी सारे ऐसे वेरिएबल्स है, बट ये फिलहाल अभी तो कह नहीं सकते कि ओमाइक्रॉन की वजह से सिर्फ इन यंगर पेशेंट्स ही इन्फेक्ट हो रहे हैं. बट ये इन्फॉर्मेशन और आना बाकी है.
SBS के इस न्यूज को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए.